बहुत सुंदर गीत बज रहा था कि बाबा तुम सा बनने का अंदर संकल्प है। ये बाबा के हर ब्राह्मण बच्चे का मैं समझती हूं यही संकल्प है कि हमको बाबा जैसा बनना है। यही लक्ष्य है ना, यही लक्ष्य। भले हर आत्मा अपनी शक्ति अनुसार पुरुषार्थ कर रही है, परंतु फिर भी हर आत्मा का लक्ष्य यही है कि मैं बाबा जैसा बन जाऊं। और आप सभी तो सेवाधारी बाबा के विशेष बच्चे जो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, ऐसे ना अनुभव होता है कि हमारी सेवा के एक एक कदम में पद्मों की कमाई जमा होती है। सेवाधारी बनना ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, और वो भी कहां के सेवाधारी हैं, कहां के सेवाधारी हैं, किसके सेवाधारी हैं, किसने हमको सेवाधारी बनाया, किसने? बाबा ने। तो थैंक्स किसका? बाबा का, कि बाबा ने हमें इस योग्य समझा जो हम बाबा के यज्ञ की सेवा के निमित्त बने हैं। भले किसी भी प्रकार की सेवा हमको मिलती है, लेकिन हर सेवा में हमारे कदम में पद्मों की कमाई जमा होती है। ये तो हर आत्मा का अनुभव है। तो सेवाधारी वास्तव में कहते किसको हैं? जब मुझे कहा कि सेवाधारियों की क्लास करानी है, तो अंदर विचार चला कि सेवाधारी कहते किसको हैं? सेवाधारी दो शब्द है ना, आपने श्री कृष्ण की महिमा में सुना होगा स्वदर्शन चक्रधारी कहते हैं, ब्रह्मा जी के लिए कहते हैं कमल आसन धारी, और एक है सेवाधारी अर्थात धारण करने वाले। क्या धारण किया हमने? स्वदर्शन चक्रधारी ने स्वदर्शन अपनी उंगली के ऊपर धारण किया है ना, कमल आसन धारी ने कमल आसन को अपना आधार बनाया, अर्थात कमल की जो विशेषता है उससे अपने जीवन के अंदर धारण किया। और बाबा ने हम बच्चों को भी कमल आसन धारी भी बनाया है, स्वदर्शन चक्र धारी भी बनाया है, और साथ साथ सेवा धारी भी बनाया है। बनाया ना, सेवा को धारण करने वाले, सेवा को अपने जीवन का अंग बनाने वाले। और सेवाधारी की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो कौन सी होगी? आप सब क्या समझते हैं? सेवाधारी अर्थात जिसके अंदर निरअहंकारिता हो, निर्माणता हो और निमित्त भाव हो। अगर कहीं अहंकार आया, मैंने ये किया, मैंने इतनी बड़ी सेवा की, तो अहंकार वाले की सेवा सफल नहीं होती है। अहंकार वाले के फिर कदम में पद्म जमा नहीं होते है ना। तो सेवाधारी अर्थात कभी भी अहंकार नहीं आ सकता। और जो सेवा हमें बड़ों से मिलती है, हम केवल निमित्त बन करके, कराने वाला कौन है? कराने वाला है करण करावनहार बाबा, और मैं केवल निमित्त हूं, मैं केवल इंस्ट्रूमेंट बन करके वो सेवा कर रही। और बाबा के इस बेहद यज्ञ में मधुबन के अंदर सेवा का जिसे चांस मिले, मैं समझती हूँ उस जैसा सौभाग्यशाली तो कोई और नहीं है ना। और उसमें सबसे नंबर वन कौन होंगे, सबसे नंबर वन कौन होंगे, मधुबन वासी है ना। आप सब तो अपने अपने स्थान से कुछ समय के लिए सेवा के लिए आए होंगे निमित्त बन करके, लेकिन मधुबन वासी तो हमेशा ही सेवा पर तत्पर रहते हैं 24 आवर्स, ऐसे ना। हम कई बार अनुभव करते हैं कि मधुबन वालों की कितनी बड़ी सेवा है। बाबा के बच्चे आते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में आते हैं, अलग अलग ट्रेन से आते हैं, है ना। उनके लिए सारी स्टेशन पर व्यवस्था करना, फिर उनके एकोमोडेशन की व्यवस्था करना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, हर प्रकार की व्यवस्था हमें कौन करके देते हैं, मधुबन वासी। तो सबसे बड़ा भाग्य किसका बन रहा है। और आप सब सेवाधारियों को भी भले कुछ समय के लिए मधुबन वासी बनने का सौभाग्य मिला तो ये कितनी बड़ी बात है ना। और हमने अपने जीवन में अनुभव किया कि जो बल, जो ताकत, जो दुआएं, जो शक्ति हमको सेवा से मिलती है वो किसी अन्य चीज से नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हम सेवा करके दूसरों को संतुष्ट करते हैं, है ना। बाबा ने शायद कल की ही मुरली में था ना कि सर्टिफिकेट लेने हैं, संडे की मुरली थी ना कल की, 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। एक पहला स्वयं की संतुष्टता का। तो जब हम सेवा करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, बाबा की श्रीमत के अनुसार चलते हैं, उसके साथ साथ बड़ों की श्रीमत के अनुसार, क्योंकि बाबा हमको श्रीमत कैसे देता है। अब शिव बाबा ने आपको आकर के कहा कि आपको ये सेवा करनी है, आपको एक महीने के लिए 15 दिन के लिए मधुबन में सेवा के लिए आना है। शिव बाबा ने आके कहा, किसने कहा, निमित्त जो भी हमारे बड़े हैं उन्होंने कहा, है ना। तो जब हम बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उनकी दुआएं मिलती हैं। बाबा की दुआएं तो हैं ही हैं, लेकिन बड़ों की दुआएं अपने जीवन के अंदर इकट्ठी करना मैं समझती हूँ बहुत बड़ा पुण्य है। और मेरा तो ये पर्सनल अनुभव है कि हमें ये दुआएं ही हमेशा आगे बढ़ाती हैं। अगर किसी ने सेवा तो खूब की लेकिन उसने अपने जीवन के अंदर अगर दुआएं जमा नहीं की, कहते दुआएं तो वो खजाना है, दुआएं वो चेक है जो मुसीबत के समय पर काम आता है। जैसे बाबा की एक मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा कि मेरे वो बच्चे जब यज्ञ के अंदर बेगरी पाठ था और उस समय पर कई बच्चों ने बाबा के यज्ञ में मदद की, सहयोगी बने, तो बाबा ने कहा जो मेरे बच्चे आवश्यकता के समय पर सहयोगी बने बाबा भी उनको सदा देने के लिए बंधा हुआ है ना। बाबा के महावाक्य जो बाबा ने गारंटी कर रखी है कि मैं उनको हमेशा देने के लिए बंधा हूं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, जरूरत के समय पर मेरी मदद की, माना यज्ञ में सहयोगी बने। तो जिस समय जिस बात की जरूरत होती है, जिस कार्य की जरूरत होती है, जिस सेवा की जरूरत होती है, अगर हम उस समय वो सहयोगी बन करके कार्य करते हैं तो मैं समझती हूँ उसका जो पुण्य है बहुत बड़ा बनता है। और उससे जो हमें दुआएं मिलती हैं, उन दुआओं जैसी शक्ति कोई और नहीं। और बाबा हम बच्चों को हमेशा कहते हैं कौन सा खजाना जमा करना है, कौन सा खजाना जमा करना है, दुआओं का खजाना जमा करना है। तो ये दुआओं का खजाना वो खजाना है, कहते जो मुसीबत के समय पर ही, ये वो चेक है जो मुसीबत के समय पर एनकैश होता है। आपको आवश्यकता के समय पर मदद मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी। आपने बहुतों के अनुभव सुने होंगे, कई बारी किसी को किसी चीज की जरूरत होती है, कोई सहयोग की जरूरत होती है, तो कहते हैं पता नहीं कौन भगवान ने किसको निमित्त बना करके भेज दिया और उसने आकर के क्या किया, हमारी मदद की। ऐसे बहुतों के अनुभव है ना। मैं अपना एक एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। सेवा की जो बात है कि जब हमें बड़े कोई सेवा देते हैं तो उसमें कितना बल होता है, उससे कितना फायदा होता है। मैं 10th क्लास में पढ़ती थी, मेरे बोर्ड के एग्जाम थे, अल्टरनेटिव डेज पर एग्जाम थे, तो बीच में एक दिन का ब्रेक था। अब बाबा की मुरली सुनने की लगन होती थी कि चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, बाबा के घर जा करके बाबा की मुरली पढ़ करके आए। अब फाइनल पेपर है, आज छुट्टी है, नेक्स्ट डे मेरा संस्कृत का पेपर, और संस्कृत में मुझे ऐसे याद करने थे। आप सोचो, संस्कृत की दो लाइनें भी याद करनी मुश्किल होती हैं और मुझे ऐसे याद करने थे जो मुझे मेरे अभी तैयार नहीं थे। मेरी बुद्धि में था पूरा दिन है, मैं आराम से कर लूंगी। अब जब मैं सेंटर पर गई, मुरली पड़ी, तो दीदी ने मुझे कहा कि एक माता है, वो कई दिन से आ नहीं रही, आप उनका पता करके आओ कि वो बीमार तो नहीं है। और पहले तो कोई फोन नहीं होते थे, कोई ऐसे साधन नहीं होते थे, पैदल जाना होता था, पैदल आना होता था। एक पल के लिए संकल्प आया कि कल मेरा फाइनल पेपर है और इस कार्य के लिए मुझे कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। घर जाऊंगी, उनके उनका हाल चाल समाचार लूंगी, फिर मैं वापस आऊंगी, फिर दीदी को आकर के सारा समाचार सुनाऊंगी और फिर मैं अपने घर वापस जाऊंगी। तो 1.5 घंटा तो मामूली बात है, लेकिन दूसरे ही पल संकल्प आया, ये कार्य किसका है, ये कार्य किसका है? भले निमित्त मुझे दीदी ने ये आदेश दिया, ये सेवा दी, पर ये कार्य किसका है? कार्य तो बाबा का है ना। तो दूसरे ही पल मेरे मन के अंदर ये थॉट आया और मैंने तुरंत कहा कि हाँ दीदी, पढ़ाई का जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जो बाबा के घर से मुझे आज्ञा मिली है, सेवा मिली है, मैं उसको जरूर करूंगी। चली गई, 2 घंटे लग गए मेरे, 11 बजे से गई, 1 बज गया मुझे। अब धूप में गई, धूप में आई तो थोड़ा सा थकान सी भी हो जाती है, तो सोचा अब क्या पढ़ूंगी, शाम को कर लूंगी। लेकिन बाबा की जो मदद की मैं बात कह रही हूं कि बाबा कहते ना दिव्य बुद्धि दाता है, तो मुझे ऐसे अनुभव हुआ कि जैसे बाबा ने वो दिव्य बुद्धि आज मुझे दे दी। कैसे? कि जब मैं पढ़ने के लिए बैठी, संस्कृत के 8 एस्से थे जो मेरे पेपर में, उनमें से कोई आ सकता था और मुझे याद करने थे, मैंने केवल और केवल 1 बार उनकी रीडिंग की और मुझे याद हो गए। जो मैं शायद 10 बार ही पढ़ती तो भी मुझे याद नहीं होते, पर 1 बार की रीडिंग से वो 8 के 8 एस्से संस्कृत के मुझे याद हो गए और उस सब्जेक्ट में मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे। मैंने फेल किया, ये मेरी सामर्थ्य से तो बाहर की बात थी ना, मैं ये नहीं कर सकती थी, लाख कोशिश करती तो भी नहीं कर सकती थी। तो ये मदद किसने की, किसने की? बाबा ने की ना। तो बाबा की मदद का अनुभव करने का हमें ये मौका मिलता है, और जिसने ये मौका ले लिया उसका फायदा ही फायदा हो जाता है। और बहुत बारी क्या होता है, हम थोड़ी सी आनाकानी कर जाते हैं, जैसे मेरे अंदर भी एक पल के लिए तो आया, पर दूसरे पल संकल्प को चेंज किया कि नहीं। और आज भी मेरे अंदर हमेशा ये संकल्प रहता है, मैं अपनी महिमा नहीं कर रही, अपने अनुभव की बात कह रही हूं, कि अगर मुझे कोई भी बड़ों से डायरेक्शन मिलता है, कोई सेवा मिलती है, अब हमारे बड़े दीदी हैं, हमारा रानीबाग सेंटर मेन है, हम दूसरे सेंटर पर उनके कनेक्शन से रहते हैं और अपने सेंटर पर भी कई बारी बहुत सेवाएं होती हैं, पर उसके बावजूद भी अगर वो कोई हमें सेवा देते हैं कि आपको ये करना है, एक पल के लिए आता है क्योंकि अपने सामने भी कई कार्य होते हैं, लेकिन अंदर होता है कि शायद बाबा, क्योंकि जो सेंटर की सेवा वो तो हमें करनी ही करनी है ना, लेकिन बाबा मुझसे कुछ एडिशनल सेवा लेना चाहता है, बाबा मेरा कुछ एक्स्ट्रा भाग्य बनवाना चाहता है, जो मुझे बड़ों ने ये डायरेक्शन दिया और कभी भी हम उनको ना नहीं कहते। इसके ऊपर मुझे दादी जानकी जी की एक बात याद आ रही है, क्योंकि दादी जानकी के भी अपने प्रोग्राम बने हुए होते थे और बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि, कई बारी दादी जानकी को कह देती थी कि आपको ये कार्य करना है या आपको यहां पर जाना है। तो दादी जानकी ने बताया, क्योंकि कई दादी से पूछते भी हैं, भाई अब हमने अपना एक प्रोग्राम बना रखा है और हमें दादी ने दूसरा प्रोग्राम दे दिया या बड़ों ने दे दिया, तो क्या किया जाए। तो जानकी दादी ने कहा कि अगर मेरा भले कोई भी प्रोग्राम बनाओ, कहीं आना है जाना है, लेकिन बड़ी दादी, क्योंकि बड़ी दादी तो बड़ी दादी है ना, बड़ी दादी को बड़ी दादी किसने बनाया, निमित्त किसने बनाया, बाबा ने ना। तो कहा इतना जरूर होता है कि मैं दादी को ये बता देती हूं कि दादी मेरा ये प्रोग्राम बना हुआ है, बाकी आप जैसे कहें। तो दादी जानकी ने कहा कि कई बारी दादी समझती है कि इन्होंने जो प्रोग्राम बना रखा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कहा दादी कह देती है कि नहीं आप इसी कार्य को करो। लेकिन अगर बड़ी दादी समझती है कि जो सेवा बड़ी दादी ने दी वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कहा दादी कहती है कि नहीं इसको नहीं, पहले इसको करो। हां जी दादी, है ना, मम्मा की भी विशेषता यही तो कहते ना, मम्मा मम्मा कैसे बनी, मम्मा मम्मा कैसे बनी, मम्मा भी तो एक कुमारी थी, हमारे जैसी कुमारी थी, परंतु कैसे बन गई, हांजी का पाठ पक्का। और उस हांजी के पाठ ने मम्मा को कहां से कहां पहुंचा दिया। और आप सबने बहुत से ऐसे मम्मा के किस्से सुने होंगे कि भले मम्मा के साथ रहने वाली बहनें कहती थी, मम्मा ये कार्य कैसे हो सकता है, बाबा ने कहा है कि मम्मा इस कार्य को इतने समय में पूरा करना है, जी बाबा। साथी कहते थे मम्मा कैसे हो सकता है, आपने हां कैसे कर दी, तो मम्मा क्या कहती थी, मम्मा कहती थी इसका मतलब आपने बाबा को पहचाना ही नहीं है, ये कहने वाला कौन है, कहने वाले को क्या मालूम नहीं कि ये कार्य कितने समय में हो सकता है और कितने समय में नहीं हो सकता, क्या बाबा को पता नहीं। तो हम ना करके अपने मार्क्स में माइनस क्यों कर दे। अगर हम बड़ों की बात को या किसी सेवा को ना करते हैं या आनाकानी करते हैं, तो हम अपने जमा के खाते में क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, घाटा डाल देते हैं। हां आपकी कोई समस्या है, कोई सिचुएशन है, वो आप बड़ों के आगे रखो, फिर आपको बड़े सहयोग देंगे ना। अब हमारे सामने कई बहनें होती हैं, हम कहते हैं माता जी आज आपको ये सेवा करनी है, लेकिन वो माता कहते हैं दीदी आज मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, नहीं नहीं आप ही सेवा करो, क्या कहेंगे कि नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप पहले कहां जाओ, भाई अपना डॉक्टर के जाओ, अपना दिखाओ आप ठीक, तो सहयोग मिल जाता है ना, मिलता है ना। तो बाबा का सहयोग, बड़ों का सहयोग हमको मिलता है, लेकिन हम जो सेवा करें जितनी भी करें, लेकिन सच्चे दिल से करें। दुआएं ऐसे नहीं मिलती हैं, मैंने कार्य कर दिया और दुआएं मिली, नहीं, कहते ना सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो सच्चे दिल पर साहेब राजी होगा, और साहेब राजी तो क्या होगा, दुआएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। और जिसको भगवान की दुआएं मिल जाएं, उसका तो कहना ही क्या। देखो भक्ति मार्ग के अंदर भी हम सब संतों की दुआएं, गुरुओं की दुआएं मांगते रहे ना। किसी भी गुरु के पास जाते क्या कहते, भाई बस आप अपना हाथ हमारे सिर के ऊपर रख दो, बस आपकी दुआ बनी रहे, है ना, कहते रहे ना। और अब हमारे सिर के ऊपर किसका हाथ है, किसका हाथ है, स्वयं भगवान का हाथ मेरे सिर के ऊपर है, स्वयं भगवान की दुआएं मुझे मिल रही हैं, स्वयं भगवान की शक्ति मुझे चला रही है। इससे बड़ी प्राप्ति मैं समझती हूं अन्य किसी भी जन्म में या अन्य किसी के द्वारा हो सकती है, हो सकती है, हो ही नहीं सकती। बाबा कई बार कहते हैं चाहे भाषण किया या बर्तन मांजा, दोनों की मार्क्स इक्वल है ना। क्यों बाबा ने कहा इक्वल है, बाबा ये नहीं देखता कि आपने भाषण किया या बर्तन धोया, बाबा ये देखता है कि जो कार्य किया, जो सेवा की, सच्ची दिल से कितनी की। बाबा कहते ये जो सेवा है ना, बाबा की अभी पीछे एक मुरली थी कि ये सेवा माया से दूर करने वाली भी है और माया को लाने वाली भी है ना। अगर हम अपने आप में बिजी होकर के मगन होकर के बाबा की याद में केवल जो मुझे सेवा मिली, जो कार्य मुझे मिला, लगन में मगन होकर के वो कार्य करते हैं, तो माया से हमेशा क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। लेकिन अगर संकल्पों में आ गए तो, संकल्पों में आ गए तो फिर माया भी इसी सेवा में ही आती है। तो हमें क्या करना है, माया से सेफ होना है, सेफ होने का रास्ता अपनाना है, या माया को लाने का रास्ता अपनाना है। चॉइस तो मेरी है ना। आप भले अपने लौकिक कार्य करते हो, उसमें कितने बिजी हो, लेकिन आपके अंदर अगर सेवा का भाव है, बाबा की सेवा के प्रति एक समर्पण भाव है, तो बाबा की इतनी मदद मिलती है जो मैं बता नहीं सकती। मैं अपना एक्सपीरियंस में बताऊं, बाबा की सेवा के साथ साथ हमारी लौकिक जॉब भी थी। अब जॉब में छुट्टी लेना या कार्य के बीच में से मुश्किल होता है ना। और सर्विस भी ऐसी थी बैंक के अंदर जहां बिजी रहते हैं ना, है ना। लेकिन आपको वंडर होगा कि उसमें कैसे बाबा की मदद मिलती थी, जो मैं अपनी मर्जी से जाती थी, मर्जी से आती थी। क्यों, अंदर एक संकल्प होता था बाबा की सेवा। अगर मुझे सेवा मिली है, भले मुझे छुट्टी लेनी पड़े, भले मुझे वहां से जल्दी आना पड़े, कैसे भी एडजस्टमेंट अपनी सर्विस में करनी पड़े, पर सेवा को हमेशा आगे रखा। और कभी कभी जो मेरे कुलीग्स होते थे फ्रेंड सर्कल में, कई बारी मुझे जल्दी जाना होता था और काम भी होता था, इधर सेंटर की सेवा भी होती थी, तो मैं उनको हंसी में क्या कहती थी, एक बात कहती थी, मैं कहती थी देखो मैं अपने किसी पर्सनल काम से नहीं जा रही, मैं जा रही हूं सेवा के लिए, और आप अगर मेरी मदद करते हो तो जो सेवा मैं करूंगी उसका 50% शेयर आपका होगा। वो इतने खुश होते थे। मैंने कहा मैं तो सेवा करके 50% जमा करूंगी, आपका बिना सेवा किए भी केवल मुझे सहयोग देने के 50% आपके जमा हो जाएंगे। वो इतने खुश होते थे, वो कहते थे आप जाओ, हम आपका काम भी संभाल लेंगे, इतना सहयोग वो करते थे। तो ये किसकी मदद थी। बहुत बारी होता था केवल मैं वहां, मेरी अटेंडेंस होती थी, केवल काम मेरे साथी करते थे मेरा। क्यों, कौन करता है? हर एक के पास अपना इतना कार्य होता है, किसी दूसरे का कार्य कोई कैसे संभालेगा? करेगा? करेगा? कर नहीं सकता, तो ये मदद किसकी थी? बल्कि उनको उमंग होता था, कभी कभी वो खुद आकर के कहते थे, मैं बाबा की कमाल देखती रहती थी, कई बार खुद आके कहते थे कि अगर आज आपको जाना है ना, आप जाओ, हम आपका कार्य देख लेंगे। कोई फेस्टिवल है, अब फेस्टिवल पर तो सेवा, शिवरात्रि आई या रक्षाबंधन आया, कोई और त्योहार आया, तो सेंटर पर तो क्या होता है, सेवा होती है। उन सबको मालूम पड़ गया था कि हर त्योहार पर इनके वहां सेवा होती है, तो खुद ऑफर करते थे कि आज तो ये फेस्टिवल है, आज तो आपको वहां बहुत काम होगा, है तो सही, आप जाओ, निश्चिंत होकर के जाओ, हम आपका कार्य संभालेंगे। तो ये मदद किसकी? जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, वो मदद भी बाबा हमारी करता। लेकिन हमने सेवा में कभी कोई संकल्प नहीं किया, किसी भी प्रकार का संकल्प नहीं किया। अगर संकल्प कर लेते हैं सेवा में, तो सेवा करके भी खुशी नहीं मिलती, सेवा करके भी शक्ति नहीं मिलती, सेवा करके भी दुआएं जमा नहीं होती, सेवा करके भी वो संतुष्टि जो होनी चाहिए वो नहीं होती है। तभी बाबा कहते हैं सच्ची दिल पर। तो हम अपने आप से देखें, हम बाबा के साथ कितने सच्चे होकर के चलते हैं। मैं कई बार कहती हूं क्लास में भी कि देखो, हम सब बाबा के बच्चे, बाबा को कहते हैं बाबा मेरा आपके ऊपर निश्चय कितना है, कितने परसेंट है सबका, किस किस का 100% किस किस का है, सबका है। तो हम कितने नशे से कहते हैं ना कि बाबा मुझे आपके ऊपर 100% निश्चय है। मैं कहती हूं बाबा का मेरे ऊपर कितना निश्चय है? क्या बाबा मेरे ऊपर निश्चय कर सकता है, विश्वास कर सकता है कि हां यही मेरे होवनहार बच्चा है, यही मेरा फेथफुल बच्चा है, यही मेरा आज्ञाकारी और वफादार बच्चा है, यही मेरा सपूत बच्चा है? क्या बाबा मेरे ऊपर निश्चय कर सकता है? बोलो, इसमें हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। क्योंकि अगर कहीं भी सच्चाई में ऊपर नीचे होंगे तो मेरे ऊपर बाबा विश्वास कैसे करेगा? करेगा? विश्वास किस आधार पर बनता है? सच्चाई के आधार पर। कल था ना, बच्चे कहते हैं बाबा वैसे तो क्रोध नहीं आता। कब आता है क्रोध? क्रोध कब आता है? जब सामने वाला झूठ बोलता है, है ना? उसने झूठ बोला तो मुझे क्या आ गया? गुस्सा इसलिए आया कि उसने झूठ बोला, अर्थात मेरे साथ सच्चाई से नहीं चला। इसीलिए तो ना, कि ये मेरे साथ सच्चाई से नहीं चला। तो जब सच्चाई से कोई नहीं चलता है, अब बाबा को तो क्रोध तो नहीं आता। आएगा क्रोध? मनुष्य तो क्रोध कर सकता है, बाबा को क्रोध तो नहीं आता। परंतु अगर हम उसके साथ सच्चाई से नहीं चलते तो क्या होता है? बाबा छोड़ देता है या हमसे ही छूट जाता है? हाँ, अगर हम बाबा के साथ सच्चाई से नहीं चलते ना, हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं वो गिल्ट होता है। कहते ना, आप सामने वाले के साथ अगर सच्चे होके नहीं चल रहे तो उससे नजरें नहीं मिला सकते हो, नजर मिला के बात नहीं कर सकते हो। अब नजर मिला के बात आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने सच्चाई नहीं रखी, लेकिन हमें फील क्या होता है, शायद सामने वाला मेरे से नाराज है। तो हमें भी क्या लगता है फिर, शायद आजकल बाबा मेरे से, बाबा किसी से नाराज नहीं होता, क्योंकि बाबा तो कहता है ना, नाराज वो होता है जो राज को नहीं जानता, बाबा तो सारे राज जानता है। बाबा तो हमको भी सारे राज समझा देता है, समझाता है ना, हमें भी कहता है कि बच्चे तुम्हें कभी किसी से नाराज नहीं होना। तो बाबा नाराज नहीं होता, लेकिन हमारी खुद की कमी ही हमें ऐसा अनुभव कराती है, है ना? और फिर हमारे मन और बुद्धि के अंदर कितने संकल्प चलते हैं, चलते हैं ना, फिर व्यर्थ संकल्पों की लाइन लग जाती है, और उस व्यर्थ संकल्पों की जाल में क्या होता है, हम फंसते चले जाते हैं। कहते ना, एक बार कोई कमजोर संकल्प, एक बार कोई नेगेटिव संकल्प या व्यर्थ का संकल्प अगर हमारे मन में आता है तो उसकी लाइन लग जाती है, चेन बनती चली जाती है, बनती है ना, और वो हमारा जाल बन जाता है और हम उसमें उलझ करके रह जाते। लेकिन बाबा कहते ये जो संगम युग का अमूल्य समय है, ये अब जाल में फंसने का समय नहीं है, जाल से निकलने का समय है। देखो अज्ञान काल में तो जाल में फंसे हुए थे ना, कितने प्रकार के जाल में फंसे हुए थे, हाँ, गृहस्थी के जाल में फंसे हुए थे, संबंधों के जाल में फंसे हुए थे, देह के भी जाल में फंसे हुए थे, माया के जाल में भी फंसे हुए थे, कितने प्रकार के जाल में फंसे हुए थे। बाबा ने क्या किया, जब हम बाबा के बने, बाबा में हमने निश्चय किया, हमें ज्ञान समझ में आया, तो क्या हुआ, धीरे धीरे उस जाल से हम मुक्त होने लगे। अब उस जाल से तो मुक्त होने लगे, लेकिन ये नया जाल तो नहीं कहीं बुनने लग गए, क्योंकि अब हमको कहां जाना है, आज भी था ना कि बाबा हमको लेने के लिए आया है ना, अब हमको वापस घर जाना है, याद है आज की मुरली ना। और घर जाने के लिए बाबा ने तीन बातें विशेष रूप से कही, कौन सी, घर जाना है तो क्या करना है, एक तो पवित्र बनना है, दूसरा ज्ञान को धारण करना है, और तीसरा कर्मातीत बनना है, है ना। पवित्रता को हमने धारण कर लिया, ज्ञान को भी समझ लिया, अब क्या बनना है, तो कर्मातीत बनने का अर्थ क्या है, कर्मातीत बनने का अर्थ क्या है, न्यारे और प्यारे और कर्म के प्रभाव से मुक्त, कर्म के बंधन से मुक्त, माना मुक्त हर चीज से मुक्त, तो व्यर्थ से भी, क्या व्यर्थ हमें कर्मातीत बनने देगा। हमने जिस जिस आत्मा के लिए जो जो संकल्प किया वो तो जाल बनता चला गया ना, लेकिन अब एक ही संकल्प है, एक ही लगन है। देखो कोई कुछ भी करे, मेरे अंदर बस एक ही लक्ष्य हो, एक ही लगन हो, एक ही संकल्प हो कि मुझे क्या बनना है, कर्मातीत बनना है, अर्थात बाप समान बनना है। बाबा के लिए कहते हैं ना कि बाबा सब कर्म बंधनों से मुक्त है। हम जो बाबा को याद करते हैं, योग लगाते हैं, वो योग भी किस लिए लगाते हैं, योग किस लिए लगाते हैं, कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए। तो ये संगम युग का बहुत बहुत अमूल्य समय है, इसमें बाबा कहते अब हमको नए कर्मों के खाते नहीं बनाने हैं। कोई और क्या करता है उससे मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे अपने से लेना है ना, है ना, हम कहते हैं ना मैं और मेरा, मैं और मेरा बाबा। तो जब मैं और मेरा बाबा, तो मुझे लेना देना किससे है या किसी और से है? किससे लेना देना है? बाबा से ना, किसी और से कोई लेना देना नहीं। कोई करे तो अच्छा, ना करे तो और अच्छा, कोई बात नहीं। तो जब हम अपने लक्ष्य को लेकर के चलते हैं तो सफल निश्चित रूप से होते हैं। अगर हम दूसरों को देखते हैं तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। भले आपकी स्पीड कितनी है, पर दूसरों को देखने में लग गए तो स्पीड में क्या होगा? आप देखो, रेस हो रही होती है बच्चों की। अब एक बच्चा नंबर 1 पे जा रहा है, अभी दौड़ रहा है, लेकिन नंबर 1 पर है, बाकी सब बच्चे उससे पीछे हैं। अब उसको अपने आगे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा ना, तो अंदर एक कॉन्शियस आती है कि मेरे आगे कोई नहीं, माना मैं सबसे आगे हूं। अब जैसे ये संकल्प आया पहला, तो उसको एक संकल्प और आता है, अच्छा मुझसे कितना पीछे है बाकी है? तो हल्का सा, पूरा मुड़ के नहीं देखता, हल्का सा दृष्टि यूं करता है, कहते सावधानी हटी। वो उसके हल्का सा इतना ही देखने में पीछे वाला आगे निकल जाता है ना। तो मुझे क्या करना है? बाबा ने एक बारी हंसी में कहा था, हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों की कमी, ये ऐसे या वैसे कुछ भी संकल्प हम करते हैं, तो बाबा ने कहा, नंबर 1 आपको आना है या उनको आना है, किसको आना है? हैं? हम कह रहे हैं कि ये ऐसा या इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका मतलब हम क्या चाह रहे हैं, इसको ठीक करना चाहिए। तो बाबा ने कहा इसको ठीक करना चाहिए, और इसने ठीक कर लिया, फिर आगे कौन? आगे तो जो ठीक, जिसने कर लिया अपने आप को, आगे कौन हो जाएगा? और मैं, फिर मैं तो पीछे रह गया ना। अब मुझे पीछे रहना है या आगे? हाँ, बाबा कहता है बराती बन के चलना है या साथी बन के चलना है? सजनी बन के चलना है ना। तो सजनी जब सजी हुई होती है तो किसको देखती है? बरातियों को नहीं देखती, वो किसको देखती है? साजन को देखती है ना, है ना। और उसकी बुद्धि में होता है कि साजन कितना अच्छा है और साजन को मैं कितनी पसंद आ रही हूं, मैं कितनी सुंदर दिख रही हूं, है ना, यही बुद्धि में होता है ना। तो मैं बाबा को कैसी दिख रही हूं? कैसी? कंप्लीट, संपन्न, कर्मातीत या कर्म बंधन वाली? मैं बाबा को कैसी दिखाई दे रही हूं? तो हम अपने आप को देखें, है ना। जो अपने आप को देखता है वही आगे बढ़ सकता है, वही उन्नति को पा सकता है। जो औरों को देखेगा, औरों को देखने वाला कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो मुझे आगे बढ़ना है ना, और अगर अब नहीं आगे बढ़ेंगे तो कब बढ़ेंगे? अब संपन्न नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? अभी नहीं तो। और संगम युग का तो समय भी कितना है, कितना है? बहुत गई, थोड़ी रही, और थोड़ी की भी थोड़ी रही। तो इस थोड़ी में मुझे क्या करना है? एक गीत बाबा का ही बजता है, बहुत अच्छा मुझे लगता है, वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा, है ना। मंजिल ऊंची है, समय कम है, एक तो धीरे धीरे चलने की बात है, और एक और ही हम उलझनों में उलझ करके रह जाए तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो हम सबको केवल और केवल, बाबा कहते लक्ष्य तो है कि हमें आगे बढ़ना है, बाप समान बनना है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा ऐसी नहीं जिसका ये लक्ष्य ना हो, है ना। और यथा योग यथा शक्ति पुरुषार्थ भी करते हैं ना, जो मौका मिलता है जितना भी मिलता है, लेकिन अब जितने से तो बात नहीं बनेगी ना, है ना, कि जितना मौका मिला जितना समय मिला वो हमने किया। अब हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा ना। और स्पीड बढ़ाने के लिए केवल और केवल किसको देखना है, सीधा अपने लक्ष्य को देखना है। कहते ना, वो तीर निशाना लगाने वाले किसको देखते हैं? अपने लक्ष्य को। अर्जुन ने किसको देखा था? उसको लक्ष्य भेद करना था, तो उसने अपनी निगाह किस पर टिकाई? अपने लक्ष्य पर टिकाई ना। तो जो अपने लक्ष्य पर टिक करके चलता है वही तो आगे बढ़ पाएगा ना। तो इसलिए हम सब, जो लक्ष्य हम सब ने रखा है कि हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है, ये लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है ना हर एक ने, कि मुझे अपने जीवन को कैसा बनाना है, तो जैसा मैं अपना जीवन बनाना चाहता हूं या बनाना चाहती हूं, मुझे केवल और केवल उसी ओर अपना कदम बढ़ाना। देखो, अगर एक बच्चा लक्ष्य रखता है ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, वो भी क्या करता है? शुरू में भले कॉमन पढ़ाई जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो अपने माइंड में ये चीज रख करके चलता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो अपना इंटरेस्ट कहां दिखाता है? उसका इंटरेस्ट भी वही होगा, है ना, और वो उसी ओर ही आगे बढ़ने का, सब्जेक्ट भी वैसे ही लेगा, पढ़ाई भी वैसे ही करेगा, संग भी वैसे ही लोगों का करेगा ना, है ना। तो हमारा संग किसके संग? कहते संग तारे, अब कुसंग की तो बात नहीं है ना। हमें इतना श्रेष्ठ संग मिला है, इतना ऊंचा संग मिला है, जिसको आधा कल्प से हम ढूंढ रहे थे ना, आधा कल्प से पुकार रहे थे, आधा कल्प से उसको याद कर रहे थे, वो अब हमको मिला है। इसलिए बाबा हम बच्चों को बहुत बार हमारे किए हुए भक्ति मार्ग के वायदे भी याद कराते हैं। थोड़े दिन पहले भी बाबा ने याद कराया था कि तुमने क्या वादा किया था बाबा से, हे भगवान आप आएंगे, हम क्या करेंगे, बलिहार जाएंगे आप पर, हम वारी जाएंगे। तो बाबा कहते अब मैं आया हूं ना। जब बाबा ये बात कहता ना तो दिल को लगती है, मैं आया हूं ना, आया हूं तो अब क्या करो, अब उलझो नहीं, व्यर्थ में नहीं जाओ, इधर उधर बुद्धि को नहीं लगाओ, अब मैं आया हूं, मुझे याद करो। यही कहता है ना। तो हम अपना बुद्धि योग बाबा के साथ लगा करके रखें, है ना, और धीरे धीरे सब कर्म बंधनों को हम मिटाते चले जाएं, नए कर्म बंधन ना बनाएं, तो ही तो हम कर्मातीत फिर कहां चलेंगे। उस दुनिया में चलेंगे जिस दुनिया की कामना हम कई जन्मों से कर रहे हैं, किया ना, मुरलियों में भी गीत आता है ना, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, चित चैन जहां पाए ले चल वहीं ले चल। और ये हर आत्मा के अंदर की दिल की पुकार है ना, है ना, दिल की पुकार है ना, और बाबा ने हमारे दिल की पुकार सुन ली। अब हमें ऐसी दुनिया में चलना है, बाबा हमको ऐसी दुनिया में ले चलता है जहां सच में सुख भी होगा, शांति भी होगी, संपत्ति भी होगी, हर प्रकार का सुख होगा ना। बाबा कहते सतयुग में हर प्रकार का सुख होगा, किसी भी प्रकार के सुख से आप वंचित नहीं होंगे। इतनी बड़ी गारंटी बाबा करता है, कितनी बड़ी गारंटी करता है, और वो भी कितने समय के लिए। आज कोई किसी को एक जन्म की भी गारंटी दे दे ना, पहली बात तो दे ही नहीं सकता। दे सकता है? कोई गारंटी नहीं दे सकता। आज तो बल्कि क्या कहते हैं, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आपके सुख को देख करके क्या होते हैं, कहते लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं दूसरों के, तो लोग तो हमारे सुख से दुखी होते दुनियावी हिसाब से, और बाबा बाबा हमको 21 जन्मों की गारंटी कर रहा है, तो इससे बड़ी क्या बात होगी। तो बाबा का तो दिल से शुक्रिया करें कि बाबा आपने मेरे दिल की बात को समझा ना, बाबा ने मेरे दिल की बात को समझा सुना, और मुझे अब बाबा उस योग्य बना रहा है कि मैं ऐसी दुनिया में जा रही हूं जो दुनिया मेरे लिए बाबा स्थापन कर रहा है ना, मेरे लिए ही तो बना रहे ना, किसके लिए, सबके लिए। अगर मेरा बाबा है ना तो मेरे लिए तो बना ही रहा है, इसलिए मुझे तो उस दुनिया में जाना ही है। उसके लिए जो बाबा की श्रीमत मुझे मिलती है, जो बाबा का डायरेक्शन मुझको मिलता है, मुझे उस डायरेक्शन को क्या करना है, फॉलो करना है ना। और बाबा को फॉलो करते करते कहां पहुंचेंगे, बाबा के साथ वापस, जहां बाबा जाएगा बाबा कहां जाएगा, बाबा कहते घर जाऊंगा तो तुमको साथ ले जाऊंगा, है ना। नई दुनिया में भी हम किसके संग आएंगे, ब्रह्मा बाबा तो होगा ना, भले रूप बदला हुआ होगा परंतु ब्रह्मा बाबा के साथ तुम्हारा कितने जन्मों का नाता है। शिव बाबा को तो आधा कल्प भूल गए थे, आधा कल्प याद किया, पर ब्रह्मा बाबा के साथ हमारा 84 जन्मों का नाता है, इसलिए बाबा कहते किसको फॉलो करो, किसको फॉलो करो, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, क्योंकि बाबा ने सबसे पहली आत्मा जिसे निमित्त बनाया, इसलिए कहते निमित्त का महत्व है, क्योंकि बाबा ने सबसे पहले निमित्त बनाया ब्रह्मा बाबा को, तो जो फर्स्ट जिसको बाबा ने निमित्त बनाया बाबा को, और बाबा के साथ साथ मम्मा को, तो हमारा लक्ष्य है मम्मा और बाबा को पूरी तरह से फॉलो करके बाबा के साथ साथ कहाँ चलेंगे, बाबा के साथ साथ फिर नई दुनिया में चलेंगे, ठीक है, सभी चलेंगे ना। हाँ, तो ये लक्ष्य अपनी बुद्धि में रख करके हम सबको चलना है। अच्छा, ओम।